पिंकेश कुमार की आवाज में, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत का बंटवारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में मतैक्य प्राप्त कर लिया था और ब्रिटिश सरकार ने अपने वचनों का पालन करते हुए अपना विधेयक प्रस्तुत किया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कॉमन सभा में प्रधानमंत्री एटली द्वारा 15 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और लॉर्ड सभा में 16 जुलाई को। इसके पारित होने से कम समय लगा और 18 जुलाई 1947 को इस पर शाही हस्ताक्षर भी हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के लिए किसी नए संविधान का प्रावधान नहीं था। यह केवल ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी और संक्रमण के अति कठिन समय में के लिए प्रावधान किए गए थे। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के द्वारा केवल औपचारिकता पूरी की गई थी और 3 जून 1947 को योजना में श्री अटली द्वारा दिए गए वचन को वैधानिक रूप दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में केवल 20 धाराएं थी जो निम्नांकित थी। 1 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 उपनिवेश पाकिस्तान और हिंदुस्तान स्थापित कर दिए जाएंगे। 2 हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश सम्मिलित होंगे सिवाय उस प्रदेश के जो पाकिस्तान कहलाएगा। पाकिस्तान के प्रदेश में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल सम्मिलित होंगे। इन अंतिम 2 प्रांतों को सुनिश्चित सीमा 1 सीमा आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी। 3 वे सभी संधियां और अनुबंध जो महामहिम की सरकार था भारतीय शासकों के बीच में है उन दिन से समाप्त हो जाएंगे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब समाप्त हो जाएगा। भारतीय राजाओं को इन दोनों ने भारत के एक ही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल भी रह सकता है। 4 प्रत्येक राज्य के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा जो महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह इस राज्य की सरकार के प्रयोजन के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। इनमें यह भी प्रावधान था कि यदि दोनों राज्य चाहे तो वही व्यक्ति इन दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल भी रह सकता है। 5 इन दोनों नए राज्यों भारत और पाकिस्तान के विधानमंडलों को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने राज्यों के लिए कानून बना सके जिसमें विदेशी क्षेत्राधिकार अथवा अपारदेशीयता के प्रयोग के लिए भी कानून सम्मिलित होंगे। 6 संयुक्त राज्य की संसद द्वारा पारित अथवा स्वपरिषद राजा द्वारा की गई आज्ञा 15 अगस्त 1947 के पश्चात इन दोनों राज्यों में वैध नहीं होगी। संक्षेप में 15 अगस्त 1947 के पश्चात अंग्रेजी संसद का भारत पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा। 7 15 अगस्त 1947 के पश्चात महामहिम की सरकार अंग्रेजी भारत सरकार के शासन अथवा रक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। 8 केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद स्वयं भंग कर दी जाएगी और इन नए 2 राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने राज्यों के लिए विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करेगी। 9 संक्रमण काल के लिए अर्थात जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा नहीं अपना लिए जाते जब तक दोनों राज्यों का शासन यथासंभव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुरूप ही चलाया जाएगा जिसमें आवश्यकतानुसार उपेक्षा जोर परिवर्तन इत्यादि किया जा सकेगा गवर्नर जनरल की आज्ञा के द्वारा। 10 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्ति दी गई। 11 इन नए राज्यों की सेवा में लगे उन पदाधिकारियों के लिए उनकी नियुक्ति भारत सचिव ने की हुई थी पूर्ण सुरक्षा दी गई। हाँ, भारत सचिव को भविष्य में इस प्रकार नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होगा। 12 महामहिम की भारतीय सेना ने दोनों राज्यों के बंटवारे के लिए गवर्नर जनरल को आज्ञा देने का अधिकार होगा और जब तक यह बंटवारा पूर्ण न हो जाए वही इस सेना की कमान तथा शासन के लिए उत्तरदायी होगा। अपने अपने भाग में आई सेना के प्रशासन के लिए दोनों ही राज्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। 13 इस प्रकार भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। 14 अदन जिसका शासन उस समय तक भारत सरकार के पास था अब अंग्रेज सरकार के अधीन कर दिया गया। इसके उपरांत अधिनियम का नाम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 रखा गया। 15 इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पाकिस्तान 14 अगस्त को तथा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गए जिन्हें पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए परंतु भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से प्रार्थना की कि वह भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिवर्तन। चूंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 इन नए राज्यों में तब तक लागू रहना था जब तक नए संविधान न लागू हो जाए अतः इस समीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक थे। अतः भारत अस्थायी संविधान आज्ञा 1947 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिवर्तन किए गए और इसमें से ऐसी धारा निकाल दी गई जो स्वतंत्र भारत के कार्यकलाप में असंगत थी। इस प्रकार धारा 2 जिसमें क्राउन द्वारा भारत में शासन चलाने का, धारा 11 से 15 तक जिसमें गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व आदेश अधिकार पत्र, भारत सचिव द्वारा भारत सरकार शासन का अधीक्षण, भारत के गवर्नर जनरल के एक वित्तीय परामर्शदाता इत्यादि थे सब निकाल दिए गए। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 9 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के स्थान पर मंत्रिपरिषद के शब्दों को रख दिया गया। इसी प्रकार केंद्र के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को अब केवल संवैधानिक शिरोमणि के रूप में ही कार्य करना था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का महत्व। 1 भारत में अंग्रेजी सत्ता की समाप्ति। अधिनियम के द्वारा भारत पाकिस्तान था भारतीय रियासतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई। इंग्लैंड के अधिनियम जो उस समय थे या भविष्य में बनेंगे भारत और पाकिस्तान में लागू नहीं होंगे जब तक कि वहां की सरकार ही उन्हें पारित न करे। इंग्लैंड के क्राउन ही भारत की प्रमुख सत्ता समाप्त हो गई। भारतीय सरकार 1935 के अनुसार प्रांतों में सीधे अंग्रेजी क्राउन की थी परंतु वह सत्ता स्थानीय विधानमंडल और संविधान सभाओं को प्राप्त हो गई थी जिनमें भारत के लिए मनोवांछित संवैधानिक बनाने का अधिकार दिया गया था। 2 गवर्नर जनरल एक संवैधानिक मुखिया के रूप में। गवर्नर जनरल तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार ही बना रहा परंतु वह अस्थायी प्रबंध था यद्यपि उसकी नियुक्ति अभी भी महामहिम द्वारा की जाती थी परंतु अब केवल उसे एक संवैधानिक मुखिया के रूप में ही कार्य करना था। इस अधिनियम में स्पष्ट कहा गया था कि गवर्नर जनरल को भारतीय तथा पाकिस्तानी विधानमंडल द्वारा पारित सभी कानूनों को अपनी सहमति देनी होगी और अपनी किन्हीं विशेष अधिकारी शक्तियों को जो उन्हें पुराने अधिनियम में दी गई थी प्रयोग नहीं करना होगा और न ही वह किसी कानून को महामहिम के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज सकता था। 3 साम्राज्य युग का अंत होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज साम्राज्य शासन का अंत कर दिया गया। इंपीरियल ब्रिटिश इंडिया के उत्तराधिकारी अब 2 प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत और पाकिस्तान थे। इन दोनों के संविधान